तरह जमात का तो ताली ही जोड़ना है, जुड़े ही लिए तो जोड़ना आसान होगा। सिखाओ तो सीखना भी रहे, जुड़ो तो जोड़ना आसान हो। हमारा साथी को जोड़ना अतराफ के देहातों से दूर दूर से मजमा आने वाला है, तो उस मजमे को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जिसको जुड़ना आ गया उसके लिए जोड़ना आसान हो गया। माशाल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم بھائیو دوستو عزیز و بزرگو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی سے جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھا ہے حضرت مولانا عمر صاحب پارنبی رحمۃ اللہ علیہ آسان انداز میں سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کاغذ کو کاغذ سے جوڑنے کے لیے گند رکھا ہے گندر کاغذ جوڑا جاتا ہے گندر سے لوہے کو لوہے سے جوڑنے کے لیے ویلڈنگ ہوتا ہے پترے کو پترے سے جوڑنے کے لیے سولڈر ہوتا ہے پتھر کو پتھر سے جوڑنے کے لیے سیمنٹ رہتی ہے دیوار کی ترتیب بنتی ہے کپڑا کپڑے سے جڑتا ہے سوئی دھاگے سے تو مولانا مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پوری انسانیت اللہ سے جڑے اس کے لیے دین ہے دنیا بہت بڑی ہے انسانوں کا سمندر ہے دنیا تو پوری دنیا اللہ سے کیسے جڑے اس کے لیے اللہ کا مبارک دین ہے اور وہ دین ہم سب کی زندگی میں لانے کے لیے محنت ہے شروع شروع میں جماعتوں میں جاتے تھے تو جماعتوں میں اعلان لمبا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی اور دنیا میں بستے والے تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے وہ دین ہم سب کی زندگیوں میں لانے کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے اسی محنت کے سلسلے میں بیان ہوگا اسی محنت کے سلسلے میں بات ہوگی یہ اعلان ہوتا تھا پہلے اللہ نے میری آپ کی اور دنیا میں بستے والے تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے اور وہ دین ہم سب کی زندگی میں لانے کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے اس محنت کے سلسلے میں بات ہوگی یہ اعلان ہوتا تھا اتنے شروع شروع میں جماعتیں آتی تھی تو کہتی تھی اعلان آدھا بیان ہے تو اعلان اس انداز کا ہو کہ جیسے بیان سے آدمی کو بات پتہ چلتی ہے ایسے پورے بیان میں کیا ہوگا اعلان سے پتہ چل جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خطہ وار جماعت کے نام پر پہنچایا ہے یہ سب خطہ وار جماعتیں ہیں پورے ضلع میں سابرکانٹھا ضلع میں اطراف کے علاقوں میں جماعتیں چلی ہیں اور جماعتوں نے محنت کی ہے ہم سب نے دعوت دی ہے اجتماع سے پہلے کتنی محنتیں ہوتی ہیں ایک علاقے میں گئے تو پتا چلا ہم لوگ جب سال لگا رہے تھے اور سال کے دوران کسی علاقے میں ہم لوگ اجتماع میں گئے تو وہاں پتا چلا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع ہونے والا ہے ڈیڑھ سال پہلے تاریخ ملی تھی ڈیڑھ سال پہلے اجتماع کی تاریخ ملی تھی تو وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے ایک ساتھی نے نیت کی تھی ہماری بستی میں اجتماع ملا تو میں اجتماع تک روزے رکھوں گا کامیابی کے لیے اس ساتھی نے ڈیڑھ سال روزے رکھے اجتماع کی کامیابی کے لیے اب یہ جو بزرگوں کا سفر ہو رہا ہے تو ایک ضلع میں اجتماع لینے کے لیے بستی والے آئے تو ڈیڑھ سو آدمی روزہ رکھ کے اجتماع لینے کے لیے آئے تھے اور کہا پورے گاؤں میں کوئی بہن ایسی نہیں ہے جو روزدار نہ ہو اجتماع لینے آئے تھے بزرگوں کے پاس اپنے ضلع میں تو محنت کے بعد اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع کی ہم سب نے دعوت چلائی ہے علاقے میں بستی میں شہروں میں دیہاتوں میں راتوں کو بستر ڈالے ساتھیوں نے ملاقاتیں کی زونوں میں جماعتیں چلی دیہاتوں میں گئے ٹینٹ لے کے گئے اور اس کی برکت سے ماشاءاللہ مجمع آنے والا ہے تو तो हमारी जिम्मेदारी ये है आने वाला जो मजमा है वो मजमा यहाँ से कुछ लेके जावे, आने वाला मजमा इस्तेमा से कुछ लेके जावे। इस्तेमा भीड़ का नाम नहीं है, जैसे दुनिया में मेले होते उर्स होते ऐसा कोई उर्स है हमारा, कोई मेला ही है। तो ये कोई मजमा जमा करना या खाली भीड़ जमा हो जावे उसका नाम इज्तिमा नहीं है। इज्तिमा तो एक मेहनत का नाम है, इज्तिमा से पहले एक मेहनत, इज्तिमा के बाद एक मेहनत, इज्तिमा के बाद की मेहनत जमातों के जाने की। इंशाल्लाह काफी सारी जमातें जाएगी, इसमें से बहुत सारे साथियों के अजाइम इरादे होंगे, घर से आदमी भेजने के इरादे होंगे, मस्जिदों से जमाते जाएगी, सोनों से जाएगी और जिले की कितनी सारी जमाते अल्लाह के रास्ते में जाएगी। तो इज्तिमा से पहले मेहनत, इज्तिमा के बाद मेहनत, इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में जमाते जावे एक मेहनत, और इज्तिमा से पहले मेहनत के बस्ती बस्ती हर घर हर फर्द तक जाना, साथी गए मेहनत हुई माशाल्लाह, और इज्तिमा में नया नया मजमा आएगा। जो शुरू शुरू में बड़े इज्तिमा होते हम लोग छोटे थे, अब के लालपुर इज्तिमा में आए थे, अब के इलाके में महुआ में इज्तिमा हुआ, तरकेसर में हुआ, सीहोर में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, कांदलजा हुआ, भरूच हुआ, लाजपुर हुआ, बड़े इज्तिमा होते थे। ऐसा इज्तिमा लेने के लिए हजरत रहमतुल्लाह के पास मजमा पहुंचा, गुजराती का मजमा, इज्तिमा हजरत जी का हमारे गुजरात में मिलना चाहिए। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे इज्तिमा तो मिल जाएगा लेकिन आप लोग क्या दोगे इज्तिमा से। तो लोगों ने अलग अलग अजाइम किए, इतनी जमातें देंगे, हर घर से एक आदमी देंगे, बहुत जमातों के अजाइम बताए। आमतौर पर जहन में होता है कि भाई जमातों में जाना, जैसे दावत के जो छह नंबर है तबलीग के, ईमान नमाज इल्म जिक्र इकराम इखलास दावत इल्लाह, ये छह नंबर है। तो इज्तिमा लेने के लिए मस्जिद रहमतुल्लाह के पास गए, मैंने इनाम साहब रहमतुल्लाह के पास, मैंने इनाम साहब रहमतुल्लाह ने यही बात गुजरात वालों से पूछी, जब बड़े इज्तिमा होते थे तब 25-30 साल पहले हम लोग बहुत छोटे थे मदरसे में पढ़ते थे, तब ये बात सुनी थी हमने कि इज्तिमा लेने के लिए गुजरात का मजमा गया, तो हजरत जी ने पूछा कि आप लोग क्या दोगे, तो लोगों ने अपने अजाइम जाहिर किए। किसी ने कहा मेहनत करेंगे, कोई बेनमाजी न रहे, क्या इतनी जमाते देंगे। तो जब बहुत सारी जमातों के अजाइम किए तो मैंने नाम साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे तो छठा नंबर है, बाकी पांच नंबरों का क्या, इतनी जमाते देंगे वो तो छठा नंबर है। और इज्तिमा से और जमातों से मुराद जमात में जाना तो नहीं है कि बस खाली जमातों में चलत फिरत हो, असल तो जिंदगी में दीन लाना है। मोहन अल्लाह साहब रहमतुल्लाह यही बात फरमा करते थे कि मैं तो वो तमाम के तमाम बातें जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसको मैं जिंदा करना चाहता हूँ। जमीआ मा जा बिह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीआ मा जा बिह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो तमाम के तमाम बातें जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए मैं इसको उम्मत में जिंदा करना चाहता हूँ। जो जमातों में लोगों को निकाला जाता है, सुलेमान अलैहि सल्लम रहमतुल्लाह से पूछते थे, इससे तश्कील होती है अल्लाह के रास्ते में निकालने की। और बहुत से लोग ऐसे होते जो तश्कील के मास्टर होते, वो तश्कील करते तो उनके कहने से लोग जमातों में निकलते। हम किसी इज्तिमा के मौके पे मौना इस्माइल साहब कादिम तशरीफ लाए थे हमारे इलाके में, तो कुछ अजाइम चल रहे थे, तो हमारे यहाँ बाहूभाई सरसा वाले वो माशाल्लाह काफी कुर्बानियां देते रहते, तो कुछ अजाइम की बात चल रही थी, साथियों ने अलग अलग अजाइम किए, तो बाबू भाई भी मजलिस में मौजूद थे मोहम्मद हनीफ, मौना इस्माइल साहब कहने लगे अरे बाबू तू तो मुर्दे से कब्रिस्तान में जाके बात करे तो भी वो चला जाए चार महीने में, इतनी कम क्यों तो अजाइम कर रहा है। वो जमातों के अजाइम की बात थी, तो बाबू भाई ने कहा 20 जमाते, तो फजल जी ने कहा 25 कर दो, तो बाबू भाई तो नहीं बोले, तो मैंने इस्माइल साहब ने कहा बाबू भाई को कि आप तो अगर किसी से मुर्दे से बात करो कब्रिस्तान जाके तो मुर्दा भी जमात में चला जावे, इसे कहो ऐसी कुर्बानी देते तो उनकी बातों में असर होता है। तो फिर साथियों ने अजाइम किए कि 50 देंगे, उस मौके पे 58 निकली थी, फिर दीवार में जगह नहीं दिखती लेकिन कूटा गाड़ दो तो चला जाता है। तो मौलाना के कहने पर हिम्मत दिलाने पर 50 के अजाइम साथियों ने किए 50 जमातों के, तो अल्लाह ताला ने 58 जमातें निकाली, जमातें निकलती है। तो साथियों ने कहा इतनी जमातें देंगे, तो हजरत फरमाने लगे कि ये तो छठा नंबर है, बाकी 5 नंबर का क्या? ईमान है, नमाज है, इल्म जिक्र है, इकराम है, इखलास है, दावत इल्लाह है, तो जमातों में जाना है तो छठा नंबर है, लेकिन बाकी 5 नंबर भी, इसलिए हमारे साथी भी तो 6 नंबर बयान करते, तो आखिर में क्या कहते 5 नंबर गिनवाते और कहते 5 को जिंदगी में लाने के लिए छठा नंबर। तो ऐसा नहीं है, जैसे 5 नंबर मेहनत के, छठा नंबर भी मेहनत करने की चीज है। 5 चीजों को जिंदा करने के लिए छठा नंबर नहीं है, वो भी एक जिम्मेदारी का काम है। तो ये जो इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, वो इज्तिमा कोई खाली रिवाज नहीं है, रिवाज के लिए हमने इज्तिमा किया नहीं है, बल्कि इज्तिमा तो बहुत बड़ा मकसद है, उमूमी हिदायत के लिए इज्तिमा दरकार है। मैंने इब्राहिम साहब दामद बरकात हुम फरमाते हैं, उमूमी हिदायत, हिदायत आम हो जावे, उसके लिए 3 चीजें दरकार है इस जमाने में। तो हमारा फरमाते उमूमी इज्तिमा, घर घर की मुलाकात और पैदल जमात। माशाल्लाह इज्तिमा की बरकत से पैदल जमातें भी चली और पैदल जमातों की कारगुजारी भी कल होगी सुबह इंशाल्लाह, तो उसमें हम पहुंचे तो पता चले जमातों ने कैसे काम किया, जमातें कैसे काम करती है, तो जमातों की कारगुजारी में पहुंचना चाहिए। ये जो इज्तिमा से पहले सोने में जमातें चलती है, तो अभी तो चूंकि एक ही राउंड या 2 राउंड चलती है, वरना शुरू शुरू में 3 राउंड इज्तिमा से पहले चलते थे कि एक चिल्ला पूरा हो, वो जमात का चिल्ला पूरा होने से एक दिन पहले दूसरी जमात शुरू हो जावे, एक दिन साथ में रहे दोनों की कारगुजारी, दूसरी जमात शुरू हो, फिर दूसरी जमात का चिल्ला पूरा हो तो 39वें दिन तीसरी जमात आ जावे, और तीसरी जमात का चिल्ला पूरा हो इज्तिमा में, और तीनों जमातों की भी इज्तिमा में कारगुजारियां होती थी। अरे गुजरात के हर जिले में होता तो कोई नई चीज नहीं है। तो वो हमारे यहां भी जब आनंद जिले में वो तीनों जोनों की जो जमातें चली, तो तीनों जमातों की 53 जमातें चली थी। हमारे 17 जोन थे, अभी 19 हुए, तो 17 51 एक मजीद बनी थी ज्यादा एक्स्ट्रा, तो 52 जमातों की कारगुजारियां हुई थी। बोले इब्राहिम साहब भी मौजूद है, तारापुर में कारगुजारी हुई थी तीनों जमातों की, उन्हें 11 बज गए थे फजर के बाद से लेके, वो सारी जमातों में कारगुजारियां सुनाई अपनी, अंदर के देहातों में जमातें गई और जमातों ने काम किया। वो जो कारगुजारियां आई तो आखिर मौलाना इब्राहिम साहब दवरों का तुमने माशाल्लाह बहुत सराहा जमातों को, और सबसे पहले मौलाना ने जमातों को ये बात फरमाई कि माशाल्लाह ये बात हुई, और फिर मौलाना ने एक बात कही थी कि दावत की लाइन की और दीन की मेहनत की लाइन की, कुरान शरीफ में जितने अहकामात और आयतें हैं कल कयामत के दिन वो तमाम की तमाम आयतें, ये इस पर अमल करने वाले, ये जो जमातों ने काम किया है का इन लोगों के ऊपर वो नूर बनकर बरसेगी, मौलाना ने मजमे को कहा था और हिम्मत दिलाई थी। उसी मजमे में सब दोड़िया रहमतुल्लाह अलैह भी थे, तो मौलाना ने तरकीब दी थी उनको, शाबाशी दी थी जमातों को, और समझाया था कि ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने उनको कबूल किया जोनों की जमातों के लिए, क्योंकि अल्लाह के दीन की मेहनत, अल्लाह के रास्ते की कुर्बानी और ये बदन मेल नहीं खा सकता, लेकिन अल्लाह ही ने कबूल किया, अल्लाह ने नवाजा कि अल्लाह ताला हमको कबूल कर रहा है और हमारा उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने हर जमाने में जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई अल्लाह ताला काम लेता गया। जैसे छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है, वो चावल रोटी नहीं खा सकता, खाएगा तो क्या करेगा, वॉमिट होगी उसे, वो हजम नहीं हो सकता उसे, वो गोश्त नहीं खा सकता। छोटा बच्चा दूध पीता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसका दूध छुड़ाने का वक्त आता है, तो फिर माँ उसको दूध छुड़ाने के मौके पे छातियों पे एलो और कड़वी चीज लगाई जाती है कि बच्चा दूध को या मुंह ही न लगावे, और सब उसको खेल लगाते बच्चों को, और वो फिर वो बच्चे को दूसरा खिलाया जाता है, शुरू करवाया जाता है खुराक, तो उसको मीठी चीजें खिलवाई जाती है, चावल की चकलियां माँ खिलाती है, मीठी रोटियां खिलाई जाती है, नरम निवाले करके माँ खिलाती है, वो खाते सीखता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो रोटी खाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो खाते खाते, फिर जब बड़ा हो जाता है तो सब कुछ खावे, हट्टा कट्टा और मजबूत बन जाता है। तो खुराक अलग अलग होती है, छोटे बच्चे की माँ का दूध खुराक तजवीज हुई, फिर जैसे बड़ा हुआ उसकी खुराक बदलती गई। तो हर जमाने में जैसी जैसी जरूरत पड़ती गई अल्लाह ताला काम लेता गया। जब जैसी जरूरत पड़ती गई अल्लाह ताला ने दीन का काम लिया। इस वक्त दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से अल्लाह ताला काम ले रहा है, इसे सीधा साधा काम है। दावत की जो मुबारक मेहनत है वो सीधी साधी मेहनत है। मोहम्मद साहब पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह इस मेहनत को मिसाल देकर समझाते थे हदीस शरीफ से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं और तमाम नबी जिस मेहनत को लेके आए वो बरसने वाले बादल की तरह है। बादल से पानी बरसता है तो पानी की कोई खुशबू नहीं, पानी का कोई आकार नहीं, पानी का कोई ढांचा नहीं, पानी का कोई कलर नहीं। लेकिन दुनिया की सब चीजों की जिंदगी पानी पे मोकू, मोगरे की खुशबू पानी से और तरबूज की लालाश पानी से और मिर्ची की तिखास पानी से और इमली की खटास पानी से और सेलरी की मिठास पानी से। मिर्ची की तिखास पानी में दिखती नहीं है, इमली की खटास पानी में दिखती नहीं है, बेर की खटास पानी में दिखती नहीं है। मौलाना मसा पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह आसान अंदाज में समझाते थे कि हर जमाने में जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई अल्लाह ताला उम्मत से दीन का काम लेता गया। इस वक्त दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से अल्लाह ताला काम ले रहा है। अगर काम अल्लाह ने आसान रखा, सब कर सके, पढ़ा लिखा कर सके, अनपढ़ कर सके, मौलवी साहब कर सके, आलिम कर सके, जाहिल कर सके, मालदार गरीब हर किस्म के लोग करे, अब तो अल्लाह ने समझा दिया समा से माजूरीन की जमातें आती है, सुन न सके बोल न सके, जिनको बहरे बोबड़े कह रहे हैं उनकी शान के खिलाफ है, हम कह तो सकते ना उनको गूंगे, इसलिए अच्छे अंदाज से कहते समाज से माजूर, जो बोलने से और सुनने से वंचित, बोल न सके सुन न सके जो माजूर है, उन लोगों को अल्लाह ने समझा है, उनकी जमातें निकलती है, उनकी चाचा माँ की जमातें निकलती है। वो तो हम उस लाइन की फिक्र नहीं करते, उस लाइन की फिक्र करने वालों ने फिक्र की। इस मरतबा गुजरात के मशवरे में बात आई थी, समाज से माजूरीन का काम अभी हमने नहीं समझा, वो माजूर तो समझ गए, माजूरीन ने जमा होकर कहा हमारी मस्तूरात का क्या। समाज से माजूरीन ने तकाजा रखा गुजरात के मशवरे में, उनको काम समझ में आया तो उन्होंने तकाजा रखा हमारी बहनों की भी फिक्र करो। और फिर कुछ साथियों ने कहा कि हमने फिक्र की तो वो बहनें भी अल्लाह के रास्ते में निकली पाबंदी के साथ, जैसे मर्दों की जैसे मस्तूरात की हमारी जमातें निकलती है तो कैसे कवायफ होते, कैसे उसके उसूल होते हैं। मर्दों की जमात तो कहीं भी चली जावे लेकिन हमारी मस्तूरात की जमात उसके कवानीन होते, उसके कायदे होते। सौदागर तो मकान में ठहरना, मस्जिद में ठहरेंगे, मस्तूरात जिम्मेदार के मकान में ठहरेगी, पहले इजाजत लेना होता है, उस वक्त हमें कोई मर्द वहां जाएगा नहीं बल्कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में ठहरेंगे। तो हमारी मस्तूरात की जमातों में भी कितनी सारी पाबंदियां और उसूल होते हैं। तो समाज से माजूर इनकी मस्तूरात की जमात, तो वो बहनें भी अल्लाह के रास्ते में निकली तो कितनी फिक्र हुई। तो जैसे पानी जमीन में गिरे तो जमीन में से उगता है, पानी जमीन में गिरे तो जमीन की सलाहियत निखर कर बाहर आती है। तो पानी गिरा दीन का दावत का और मेहनत हुई तो फिर ये दुनिया लोगों की सलाहियतें निखर कर बाहर आई। तो मानो मसा पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह समझाया करते थे कि ये दीन की मेहनत तो ऐसी है, तमाम नबी जिस मेहनत को लेके आए वो सीधे साधे पानी जैसी मेहनत, कि पानी का कोई कलर नहीं, पानी की कोई खुशबू नहीं, पानी का कोई आकार और ढांचा नहीं, लेकिन जो गिरेगा तो सब सलाहियत जमीन की निखर कर बाहर आएगी। इससे एक बागीचा एक खेत है, इसमें किस्म किस्म के दरख्त है, पानी जाएगा तो तरबूज भी उगेगा, केला अनानास और संतरा भी उगेगा, नाशपाती भी और बेर भी उगेगी, सब चीजें उगेगी। अब तरबूज का लाल कलर, तरबूज का बड़ा ढांचा, तरबूज की मिठास पानी में दिखती है, केले की मिठास, केले का सेब, अनानास की पीलास, अनानास की खटास और मिर्ची की तिखास और गन्ने की मिठास, ये पानी में दिखता नहीं है, लेकिन ये जावे तो सलाइन निखर कर बाहर आवे जमीन की, और पानी अगर न जावे तो तरबूज भी सूख जाएगा, नाशपाती अनानास संतरा भी सूख जाएगा, और बेर और आम भी सूख जाएगा। तो मौलाना समझाते थे कि दुनिया में जब दीन की मेहनत होगी तो उम्मत की सलाहियत निखर कर बाहर आएगी। नमाज के शोबे में पानी पहुंचेगा, जकात के शोबे में पानी पहुंचेगा, हज के शोबे में पानी पहुंचेगा, और हर लाइन से इससे सबको हम सबको मालूम है। 20-25 साल पीछे जाइए, ये जो हमारा इतना बड़ा इज्तिमा है, पहले साबरकांठा जिले का इज्तिमा इतना बड़ा होता था। हमारे आनंद जिले में हम लोग, मुझे मालूम है, हम आनंद मदरसे में पढ़ते थे 80 से 92 तक, तो पूरे जिले का इज्तिमा हो तो मदरसे से हम लोग दुआ में जाते थे जुम्मा मस्जिद मरकज पर। अभी है ना तो बहुत बड़ी है, वो इतनी छोटी मस्जिद थी कि अभी जितनी एक सप में आते ना, वो एक सप के आदमी पूरी मस्जिद में ना आ सके, इतनी छोटी थी। ये पुराने लोगों ने देखी होगी आनंद की जामे मस्जिद, आनंद का जो मरकज है बहुत छोटा था। आनंद में 6 मस्जिदें थी, 7वीं मेरे सामने बनी। मेरे सामने हमको इसलिए याद है कि मदरसे के बच्चों को जकरिया के उद्घाटन में ले गए थे। ओपनिंग होता है किसी काम का तो जकरिया मस्जिद बनाने की थी। अहमद भाई फूट वाले साहिब कहते अल्लाह ने इनको मार दिया था, उन्होंने अपने पैसों से मस्जिद बनाई। वो दीनदार थे, दावत के काम में लगे थे, तो मदरसे के बच्चों को बुलाओ, तो मदरसे के दिन से बच्चों को दुआ करवाने लगे, छोटे हाथ उठाओ, ऐसे ऐलान हुआ था। तो हम छोटे छोटे से हाथ उठाए थे, और मजदूर हक साहब थे शेखुल हदीस देवबंद के, वो तशरीफ लाए थे, तो दुआ करवाई थी शेख साहब ने, देवबंद के शेख साहब ने, और जकरिया मस्जिद की बुनियाद रखी थी, और मदरसे के सब बच्चों को 10-10 रुपये और करी के लाड़वे दिए थे। समझ पड़िए, करी के लाड़वे, सबको मिठाई दी थी। वो मैं 80 की आपको बात कर रहा हूँ। तो आनंद में 6 मस्जिदें थी, 7वीं हमारे सामने बनी थी। अभी जानते हो आनंद में कितनी मस्जिदें? 112 से ज्यादा मस्जिदें आनंद में है। 81 में मस्जिद और जमातें बनी हुई है, 81 मस्जिदों में तो मस्जिद और जमातें बनी हुई है। तो पानी जैसे गिरे तो जमीन की सलाहियत निकल कर बाहर आवे, पानी गिरे तो जमीन की सलाहियत निकल कर बाहर आवे। तो मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। आनंद में एक भी ऑफिस नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे आनंद मरकज पर तरावी सुनाने के लिए, हाफिज कहाँ से लाते थे? यूपी बिहार से, देवबंद सहारनपुर से मंगवाते थे। और 2-3 आदमी का काम था डायरी लेके घूमने का सुपरमार्केट में, हाफिज जो पैसा अलवाना से आलो, वो महीना भर घूमे तो 800 रुपये जमा होवे तो दोनों हाफिजों को देवे। अभी आनंद में 1000 से ज्यादा हाफिज है आनंद शहर में, और जिले का तो मुझे अंदाजा भी नहीं है। और पूरे जिले में उल्मा 2000 से ज्यादा होंगे, साल वाले 393 हमारे जिले में। ये तबलीग से हुआ, ये दावत की मेहनत से हुआ। तो मैंने कहा आनंद में 6 मस्जिदें थी, 7वीं हमारे बाबा ने बनी, अभी 125 के करीब मस्जिदें बनी। ये हर जगह का हाल होगा, ये मैं अपने आनंद का सुना रहा हूँ। तो आपके सब जगह के मैनेजर से कहा कि आपका इज्तिमा है, पहले बड़े इज्तिमा होते थे, गुजरात का इज्तिमा आपके इलाके में शायद 2 हुए होंगे, हम लोग छोटे थे, 1 में तो पहुंचे थे, लेकिन दूसरा भी सुना था। तो वो गुजरात के इज्तिमा में ऐसा इंतजाम होता था, अभी ये जिले के इज्तिमा में ऐसा इंतजाम होता है। अभी जिले के इज्तिमा में आपके यहाँ जैसे ये जो बड़े बड़े दालूम है वदाली हमने सुना था, अभी तो गढ़ा किया, पानपुर किया, और दूसरे भी मदरसे आपके लालू में, अहमदनगर में भी मदरसा। वरना पहले हम जब पढ़ते थे तो दालूम ज्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। हम जब पढ़ते थे तब 3 सुनते थे गुजरात में, आनंद, दाभेल और रांदेल। हम जब पढ़ते थे तो 3 दालूम थे पूरे गुजरात में, दाभेल था, आनंद और रांदेल। अभी तकरीबन 62 से ज्यादा दालूम है जहाँ दौरे हदीस तक की तालीम है, जहां से बच्चे फारिग होते हैं, बुखारी की और सियासिता की तालीम होती है। पहले कोई हज पढ़ने नहीं जाता था, बुढ़े लोग हज में जाते थे, पहले कोई हज में नहीं जाता था। वो तो अब चूंकि हालत ऐसे हुई कि सब्सिडी बंद हुई, वरना हुकूमत जो हज की सब्सिडी देती है ना, वो शुरू क्यों हुई? कोई हज पढ़ने जाता ही नहीं था, तो जैसे कुरान शरीफ में हज के फजाइल है, ऐसे हिंदू लोगों के धार्मिक शास्त्र में भी हज के फजाइल लिखे हुए हैं कि मुसलमानों की एक क्रिया हज है, वो मुसलमान करते रहे तो दुनिया टिकी रहेगी, ये उनके धार्मिक शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हुकूमत ने ये सब्सिडी चालू करी थी कि तमें जाओ हमें सब्सिडी आ ली छू, ये सब्सिडी ऐसे चालू हुई थी। और अच्छे लोग थे हुकूमत में, वो सब्सिडी भी देते थे। वो तो अब ऐसे हालात आए कि दो तीन साल से सब्सिडी भी बंद हुई, तो पहले कोई हज पढ़ने भी नहीं जाता था। लेकिन चूंकि मेहनत होती है तो मेहनत की बरकत से सब होता है। अभी गुजिस्ताब्दे किस्से का मदरसे का जलसा था हमारे आनंद जिले में, तो आनंद जिले में मदरसे के जिले में देहात अंदर का देहात था, अंदर के देहात में छोटे बच्चों के मदरसे के जलसे में हम लोग गए थे। वहां पे मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे। तो मुफ्ती साहब ने बैठे कहा कि ऐसे छोटे देहात में ऐसे कुरान पाक की तालीम हो रही है और ऐसे बच्चे अपने प्रोग्राम को रजू कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा देखो दो मेहनतें दरकार है, एक तो मकतब की मेहनत के लिए छोटे बच्चों पर मेहनत, और दावत की मुबारक मेहनत के लिए से बड़ों पर मेहनत। फिर वो मुफ्ती साहब ने अहमियत बताई दावत के काम की। वो मुफ्ती साहब कह रहे कि मैं उमरा में गया था, उमरा से कल ही लौटा हूँ और मुझे दावत दी गई तो मैं जलसे में आया हूँ। तो मुफ्ती साहब कहने लगे कि उमरा करने के लिए मैं गया तो मस्जिद नबी में कुरान पाक के हल्के लगते, 233 के हल्के आज भी लगते, जो लोग हज में उमरा में गए उनको मालूम है। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं मदीना शरीफ में गया तो हल्के लग रहे थे, तो मैं तो चूंकि मामूलात पूरे करने थे तो मैं अपने मामूलात पूरे करने के फजर की नमाज के बाद मैं बैठ गया कि मैं यासीन पढ़ू मामूलात पूरे करूं। तो अलग अलग 40-50 हल्के थे, भाई मुहद्दिसीन अपने हल्के लेके बैठे हुए थे दर्द देने के लिए। तो एक हल्के में कोई बहुत बड़े मुहद्दिस होंगे, उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया कि आप हिंदुस्तान के, आप भी आके बैठ जाओ। तो मैं भी बैठ गया। तो मुफ्ती साहब कहते कहा कि मेरे पास जितने बैठे थे हल्के में सब अरब लोग थे। ये मुफ्ती साहब कह रहे थे अलहमद शरीफ सुनी जा रही थी, किसी एक अरब की अलहमद शरीफ सही नहीं थी, किसी एक अरब की अलहमद सही नहीं थी। तो मुफ्ती साहब ने वो जो शेख थे उस्ताद साहब के जिन्होंने को बोले, उनको कहा कि क्या बात है, हम तो हिंदुस्तान से आए हैं और हम लोग हिंदुस्तान में ऐसा अच्छा कुरान पढ़ते है, मैं भी देखो पढ़ रहा था, मैं हाफिज भी हूँ, और तुम लोग अरब हो, ये अरब की औलाद है और इनको कुरान नहीं आता। तो वो जो शेख थे कह रहे थे देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि दुनिया में दो मेहनतें होती है जो हमारे यहाँ नहीं है। मदीना शरीफ में जो दस दे रहे थे हरम में, वो मुफ्ती साहब को कह रहे हैं कि दुनिया में दो मेहनतें चल रही है जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ न होने की वजह से अरब लोग कुरान और अलहमद सही नहीं पढ़ पाते, और दुनिया में हो रही है और खास करके तुम्हारे हिंदुस्तान में हो रही है। क्या एक तो मकतब और मदरसे की मेहनत तुम्हारे इलाके में है, उसकी बरकत से हर एक आदमी कुरान पढ़ना जानता है, सुरते याद होती है, इमाम साहब दो कोई भी नमाज पढ़ा सके। कहे आपके ये मेहनत है, दूसरी दावत की मेहनत है। कहिए दो मेहनतें आपके हिंदुस्तान में हो रही है, उसकी बरकत से तुम खुद आलिम भी हो और तुम खुद पढ़ते भी हो और हम लोग अरब लोग हैं, लेकिन हमारी ये दो मेहनतें छुकी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारा जो इस वक्त का जो बादशाह है उसका नाम यह लेना नहीं चाहिए। इस वक्त की बात है, मैं आपको एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ। अभी जो बादशाह उसका नाम लेके वो मुहद्दिस ने कहा कि हमारे बादशाह तक ये बात पहुंचाओ कि यहाँ वो दोनों मेहनतें शुरू करवावे। तो मकतब और मदरसा की मेहनत के जरिए से छोटे बच्चों में दीन आता है, और ये दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से बड़ों में दीन आएगा। तो अल्लाह ताला ने हमको खितावार जमात के नाम पर पहुंचाया है। अब ये जो मजमा आया है, इस मजमे की जिम्मेदारी है, हजारों का मजमा आएगा, इज्तिमा हमारा असर से शुरू होगा, लेकिन ये अमानतदारी की बात है, ये जिम्मेदारी की बात है। हर साल इज्तिमा होता है और खितावार जमातें बनती है और खितावार जमात के नाम पर मजमा आता है, लेकिन होता है ऐसा है एक रिवाज बन जाता है कि जल्दी आना पड़ेगा, जिम्मेदारों ने कह दिया तो आ गए, लेकिन साथी जिम्मेदारी सही नहीं निभाते। इस वजह से आने वाले मजमे का वक्त सही नहीं गुजरता। हमको नहीं मालूम इज्तिमा में कैसे लोग आते, ये जो इज्तिमा है हम जानते नहीं है। इज्तिमा से आने वाले मुतासिर होते जाते, असर लेके जाते, वो तो जो लाइटों में हो उसको उजाले का पता नहीं है, लेकिन एक आदमी अंधेरे में होता है, लाइट चली जावे और एकदम से लाइट आवे तो आदमी अंधा जाता है। घंटा दो घंटा लाइट ना हो और एकदम लाइट आती है तो आदमी अंधा जाता है कि नहीं? हम लोग चूके माहौल में है, लेकिन अतराब के देहातों में जो जोनों की जमातें चली है उनकी कारगुजारी सुनो तो पता चलो उम्मत का क्या हाल है। तो ऐसे लोग इज्तिमा में आते हैं तो यहाँ तक नमाजों की सफों से, खिलाने के निजाम से, इस्तिंजे के निजाम से, सुन्नतों के निजाम से मजमा मुतासिर होता है, कोई मामूली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसकी बरकत से हिदायत मिली है। ये जो इज्तिमा शुरू हुए, मेहसाना का इज्तिमा पहला हुआ डिंडोल में परसू, फिर कल बनासकांठा का इज्तिमा सात सुबह दुआ हुई, और अब ये तीसरा इज्तिमा साबरकांठा का शुरू हो रहा है। परसों मुफ्ती इलिया साहब की बात थी बनासकांठा में, तो मुफ्ती साहब ने पूरे मजमे को हिस्सावार जमात को समझाया कि कैसे कैसे लोग इज्तिमा में आते। मुफ्ती साहब ने कहा किसी इलाके के बारे में कि एक इलाके गोधरा में बहुत बड़ा इज्तिमा था, गोधरा में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, तो एक आदमी ऐसा है कि वो काम से मानूस नहीं था बल्कि बहुत मुखालिफ था, ऐसा मुखालिफ कि वो बस में बैठा और पता चले कि बस में जमात है तो उतर जावे, ये तो जमात वाले इसमें बैठ नहीं सकते। ऐसा आदमी था, इतना कट्टर जमात से, उस आदमी के बेटे जमात वालों से ताल्लुक था दोस्ताना, स्टूडेंट था वो और दोस्तों से उसके दोस्त जमाती थे, जमात से जुड़े हुए थे। तो गोधरा इज्तिमा में वो जो आदमी गैर मानूस था, अपने आप को सुन्नी कह रहा था, गैर मानूस था, गलत फहमी में था बेचारा, उसका बेटा वो दोस्तों के ताल्लुकात में इज्तिमा में आ गया। उसको ईशा की नमाज के बाद पता चला कि मेरा बेटा घर पे नहीं है और पता चला गोधरा इज्तिमा में गया है। उसी के उसी वक्त तो उसने रिक्शा की, पहले गाड़ियां नहीं थी, तो 100 किलोमीटर ऑटो रिक्शा से गोधरा पहुंचा, ठंडी में रात को 12:30 बजे गोधरा पहुंचा। अब जैसे आप लोग खितवार जमात में आए हो, ऐसे खितवार जमात में सब जिम्मेदारियां होती है, चौकीदारी की जमात, दुआ जिक्र की जमात, तश्कील के साथी, तालीम करने वाले साथी, मजमा जोड़ने वाले साथी, तखत की जमात, बाहर के मजमे की अलग, अंदर के मजमे को जोड़ने की जमातें होती है, तो बारी बारी तरतीब बनती है। तो मजमा ठंडी में सोया हुआ था, अभी आदमी बबर डाल रहे अपने मुंह से एल फैल बके के मारा शुक्र है तुम्हारा माई क्या हमें तो सुन लीजिए अभी मारो शुक्र के मायो, ऐसा बहुत जोर जोर से बैल फैल बके। खिताब जमात ने देखा कि कोई आदमी है, कौन शोर कर रहा है, तो चाचा क्या है क्या है? कहने तुम लोग तो जमाती हो, हम तो सुन्नी है और मेरा बेटा यहाँ आ गया है। तो सबका चेहरा खोल खोल के देखे मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा, वो समझदार थे, तो उनको पानी पिलाया और उनको कहा कि भाई चाचा देखो अभी अब सबको ढूंढोगे कहाँ मिलेगा बेटा आपका, आपको ठंडी भी लग रही है, भूखे भी होंगे, तो उनको नाश्ता वगैरह करवाया और ओढ़ने का सामान भी दिया, और ठंडी में बाद जैसे तापनी होती है तो उसको सेकने के बेटा कहा बैठो अभी आप सो जाओ, सुबह में हम आपकी मदद करेंगे, हम सुबह में आपकी मदद करेंगे उठाने के आपके बेटे को ढूंढने में। तो उसको बात समझ में आई कि मैं कहाँ ढूंढूंगा बेटों को, तो उसको ओढ़ने का सामान भी दिया, बाहर तापड़ी झूड़ी चल रही थी उसको थोड़ा सेकाया और फिर उसको सोने का इंतजाम करवा दिया। सुबह उठे तो मौलाना मसा पालनपुर रहमतुल्लाह का बयान चल रहा था, मौलाना का बयान शुरू हुआ, मौलाना अपने अंदाज में कुरान पढ़ते थे, बयान करते थे, वो हमने देखा है मौका, वो मंजर देखा है, हमने जब साल लगाया मौलाना बयान करते थे कुरान शरीफ पढ़ते थे तो ऐसा लगे जैसे कुरान शरीफ उतर रहा है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिन्होंने मौलाना को देखा है, मौलाना का अंदाज था, तो मौलाना का बयान चल रहा था, फजर की नमाज के बाद बयान शुरू हुआ, वो फिर अपने बेटों को ढूंढ रहा है इधर उधर, लेकिन जैसे मौलाना का बयान शुरू हुआ तो अल्लाह की बात होती है उसके कानों पे जो आवाज पड़ी, तो ढूंढते ढूंढते उसकी उसकी आवाज उसके कानों में आवाज आ रही है, तो ढूंढते ढूंढते वहीं बैठ गया और पूरा मौलाना का 2.5 घंटा बयान सुना। और असल ऐसा हुआ वो अपने बेटे को तो भूल गया, आखिर में तश्कील हुई तो वो भी खड़ा हो गया अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। अल्लाह का करना हुआ, उसने चार महीने भी लगाए, उसका बहरून भी वक्त लगा, उसके बेटे भी आलिम बने, बेटों के बेटों को पढ़ाया। ऐसे लोग भी इज्तिमा में आते हैं, इज्तिमा में पता नहीं कैसे कैसे लोग आते। हम लोगों को भी हिदायत कैसे मिली, हर साल इज्तिमा में आते हैं और पहले बड़े इज्तिमात में जाते थे। ये जो मेहनत हो रही है, उमूमी तीन दिन और उमूमी इज्तिमा, दोस्तों की तरतीब, तो भाई दोस्तों बात ऐसी है, हम लोगों को अल्लाह ताला ने खित्तावार जमात के नाम पर पहुंचाया है। हमारी जिम्मेदारी वो है जो अहद में 50 सहाबा की जिम्मेदारी थी। सबको मालूम है जमातों में जाते इस किस्से को हम बयान करते हैं कि उनको एक जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इश्तिहादी गलती से जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो खित्तावार जमात तो पूरे इलाके से मजमा आएगा। अब बुजुर्ग तो ये चाहते हैं कि इतना बड़ा जो पिंडाल है, पूरे पिंडाल में जो मजमा आएगा उस मजमे को, ये मजमे को तकसीम ऐसे करना कि पूरे मजमे पर मेहनत हो, पूरे इस्तेमा का दारो मदार खित्तावार जमात के ऊपर है। मौला इनु साहब पूना वाले रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे, हजरत शेख जकर रहमतुल्लाह का हवाला देकर के इस्तेमात होते हैं, तो हजरत फरमाते थे मौला इनु साहब के इस्तेमात होते हैं तो बयान करने वाले की तासीर नहीं है, तासीर इस मजमे की है। फिर मौलाना मिसाल देते थे, क्या मिसाल देते थे मौलाना? मिसाल देते थे धोने की, भैंस धोने की, गाय धोने की और माँ की छातियों की मिसाल देते थे। और मौलाना यूं कहते थे, माँ की छातियों में दूध नहीं होता, बच्चा तलब से हाथ मारता है, अल्लाह माँ की छातियों में दूध उतारता है। और अपने गुजराती में कहते हैं पाहो देवड़ाबू, भैंस धोने की हो, बकरी धोने की हो, गाय धोने की हो तो पासा दिला दे, हमारे यहाँ पासा देना कहते। तुम्हारे साबरकांठे में क्या कहते? पाहो देवड़ाबू, क्या होता है पाहो देवाना? वो उसके थनों में दूध उतरवाना, गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा, भैंस का बच्चा तलब से मुंह मारता है तो अल्लाह दूध उतारता है। हजरत शेख जकर रहमतुल्लाह इस बात को फरमाया करते थे, मौलाना सब रहमतुल्लाह हजरत शेख का हवाला देकर कहते थे कि तासीर बयान करने वाले मौली साहब की नहीं है, तासीर मजमे की है। जैसे माँ का बच्चा तलब से हाथ पैर हाथ मारे तो माँ की छातियों में दूध आवे, और गाय भैंस का बच्चा तलब से यूं मुंह मारे, इसलिए जो बच्चे मर जाते हैं जानवर के, तो वो भैंस को दूध दिलाने के लिए क्या करते है, आदमी पहले बैठता है फिर यूं यूं हाथ करता है, इससे बच्चा तलब हो तो दूध आवे। अब उसके पारा तो मर गया है, बकरी का लवारा होता है और गाय का बछेरा होता है और घोड़े का बछेरा होता है, ऐसे भैंस का पारा होता है, तो पारा मर गया, लवारा मर गया, वाचरदा मर गया, तो क्या करते वो लोग कि उसको मुंह के पास दाना भी रखेंगे और पानी लेके डालेंगे, यूं यूं करेंगे तो जानवर को ऐसा लगे कि बच्चा मुंह मार रहा है, उसके आंचल को थनों को ले लेके आदमी ऐसा करेगा वो तलब बतावे, तो गाय भैंस में से दूध उतरे। जैसे रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बयान करने वाले की तासीर नहीं है, तासीर मजमे की तलब की है। जैसे गाय भैंस के बच्चे की तलब से अल्लाह दूध उतरवाता है, ऐसे मजमे में तलब होगी, अल्लाह कहने वाले की जबान से वो बातें निकलवाएगा जो सुनने वाले की जरूरत होगी, और सुनने वालों को अमल की तौफीक होगी। ये खित्तावार जमात और हमारी जिम्मेदारी है आने वाले मजमे में तलब पैदा करवाना। इससे परसों मौलाना इब्राहिम साहब ने बनासकांठा में दिन रोल इज्तिमा में कहा कि उलमाए किराम की जिम्मेदारी एक तो उम्मत को दीन देना और दीन सीखने की तलब भी पैदा करवाना, क्योंकि मजमे को दीन दो लेकिन मजमे के पास दीन नहीं है, तलब वालों को दीन मिलता है, तो मजमे को दीन सिखाना, लेकिन दीन सीखने के लिए तलब चाहिए तो तलब पैदा करवाना। इसे सबको मालूम होगा, कोई बीमार होता है तो कहीं शक्ति की बोतल ला लो, वो शक्ति की बोतल नहीं होती, वो भूख उगड़ने की बोतल होती है। शक्ति तो खाने से पैदा होती है, ताकत तो डॉक्टर भूख खुलने की बोतल लिखता है, ऐसी भूख लगती है कि पत्ते भी चबा खावे और लकड़े भी चबा खावे, वो दाल रोटी का क्या औकात। तो जैसे भूख खुले तो आदमी खाना खावे, ऐसे मजमे में तलब होगी तो मजमा दीन सीखेगा। तवार जमात की जिम्मेदारी है आने वाले मजमे का वक्त सही गुजरवाना। इसे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इस्तेमा के ताल्लुक यूं समझाते थे कि जो मजमा आने वाला है, आने वाले मजमे की मिसाल कोयले की है, कोलसा जानते हो कोलसा कोयला, और खितवार जमात की मिसाल सुलगता अंगारा, और बयान करने वाले की मिसाल फूक मारना। तो ये जो खितवार जमात का मजमा है वो दहकते अंगारे है, और ये जो हजारों का मजमा आने वाला है वो मजमा जले हुए कोयले है, और बयान करने वाले जो भी बयान करेंगे, मतलब अल्लाह साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना इस्माइल साहब, हमारा काबिरीन जिन्होंने जिंदगियां गुजार दी है दीन की मेहनत के लिए, वो अल्लाह वाले हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, बल्कि तशरीफ ला चुके आए हुए। ये इज्तिमा तो इसी उनवान पर है, हम लोग उम्मीद करते हैं अल्लाह वालों की तशरीफ आवरी और अल्लाह वालों की बदनामी की बरकत से हमारे यहाँ दीन आएगा। जैसे दुनियावी एतबार से कोई बड़ा आदमी आने वाला हो, कमिश्नर आने वाला हो, मंत्री एमएलए आने वाला हो, तो उसके आने से पहले पंचायत क्या करती है, पुरेरी टूबो बदली नाखो, भाई फरकता गोरा नाखो, एलईडी नवी नाखो, रास्ते हमवार कर दो, रोड सही कर दो, कलर कर दो, क्या नहीं होता। कोई बड़ा आदमी आने वाला होता है तो उसके आने से पहले समार काम होता है, रास्ते ठीक ठाक हो जाते हैं, लाइटें जगमग हो जाती है, सफाई काम होता है, पानी का छिड़काव होता है, कलर काम होता है। जैसे दुनियावी कोई बड़ा आने वाला होता है तो उसके आने से पहले कचरा और गंदगी साफ हो जाती है, नगर पंचायत और पालिका वाले सफाई का इंतजाम कर देते हैं और लाइटों का और रंग रोगान का इंतजाम हो जाता है। तो दुनियावी बड़े आने बड़ों के आने से पहले गंदगी और दूर होकर सफाई सुथरा और जगमग और साफ हो जाता है। हम लोग तावील अच्छी करते हैं अल्लाह वालों के तशरीफ और इसी की बरकत से अल्लाह बेदीनी को दूर करके दीनदारी को आम करता है। ये दावत की मेहनत है। इतने शुरू शुरू में जमातों में जाते थे तो हमारे साथ जो जिम्मेदार होते थे वो आलिम नहीं होते थे। हम लोगों ने साल लगाया 94 में, हमको जो जमातों में लेकर चले वो मौली साहिबान नहीं थे बेचारे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हमारी तरबियत की, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें सिखाई, वो हमें काम दे रही है, और वही बात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। वो उनका तजर्बा, वो तबलीग के बारे में कहते थे दावत पर मेहनत करोगे तो बेदीनी से बचोगे। अभी पूरी दुनिया में बेदीनी का रोग है, तो बेदीनी से बचने के लिए अल्लाह ने दावत का मुबारक काम दिया है। वो अमीर साहब समझाते थे ईमान पर मेहनत करोगे कुफर शिर्क से बचोगे, नमाज पर मेहनत करोगे गुनाहों से बचोगे, इल्म पर मेहनत करोगे जहालत से बचोगे, जिक्र पर मेहनत करोगे गफलत से बचोगे, इकराम पर मेहनत करोगे दुश्मनी से बचोगे। जिसका लिया उसका दिया, इससे दुनिया में दुश्मनी है, हक वालों का हक दे दो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो समझाते थे मजमे को ईमान नमाज इल्म जिक्र इकराम इखलास दावत इल्लाह, कि ईमान पर मेहनत करोगे कुफ्र शिर्क से बचोगे, नमाज पर मेहनत करोगे गुनाहों से बचोगे, इल्म पर मेहनत करोगे जहालत से बचोगे, जिक्र पर मेहनत करोगे गफलत से बचोगे, इकराम पर मेहनत करोगे दुश्मनी से बचोगे, इखलास पर मेहनत करोगे दिखलावे से बचेंगे। ये तो दावत की मुबारक मेहनत की बात करते, लोगों को पता चला इखलास किसे कहते हैं। मतलब जब दावत नहीं थी, तबलीग नहीं थी, तो दिखलावे का जज्बा था। मस्जिद की घड़ियाल के कांच पे मकोड़े जैसे उरुफ से लिखा होता था घड़ियाल कोने मुके लीजिए, दिखलावानो जज्बो हो तो 25 रुपए की घड़ियाल मुके तो मकोड़ा के उरुफ से लिखेलू हुए के फलाना मरी गयो छे एने इशारे सवाब माते आप मस्जिद में घड़ियाल मुके लीजिए। कुर्सी के पायों पर भी लिखेला रहता था कोड़े मुकी, माइक की दंडी वायर पर भी लिखते थे। अभी लाखों करोड़ों की मस्जिद बनाई, किसने बनाई पता नहीं, वो तबलीग की बरकत से समझाया गया इखलास। इखलास यानी ईमान, اخلاص پر محنت کروں گے دکھلاوے سے بچوں گے اور دعوت پر محنت کروں گے بے دینی سے بچوں گے. ایک امیر صاحب کے ساتھ جماعت میں چلے, وہ سمجھا رہے تھے 6 نمبر, ایمان سے عمل زندہ ہوگا. کیا سمجھا رہے تھے؟
ایمان سے عمل
زندہ ہوگا, نماز سے عمل صحیح ہوگا, نماز سے عمل, علم سے عمل مکمل ہوگا, ذکر سے عمل قیمتی بنے گا. ایمان سے عمل زندہ ہوگا, نماز سے عمل ظاہر ہوگا, علم سے عمل مکمل ہوگا, ذکر سے عمل قیمتی بنے گا, اکرام سے عمل محفوظ ہوگا, اکرام سے عمل محفوظ ہوگا, اخلاص سے عمل جاندار بنے گا, عمل میں جان پیدا ہوگی, اور دعوت سے عمل دوسروں میں منتقل ہوگا, دعوت سے عمل دوسروں میں زندہ ہوگا. یہ دعوت کی مبارک محنت ہے. اس محنت کے سلسلے میں ہمارا اجتماع ہو رہا ہے اور اجتماع میں بہت بڑا مجمع آنے والا ہے. اس مجمع کا وقت صحیح کیسے گزرے اس کی ذمہ داری اس مجمع کی ہے, خطوار جماعت کی ذمہ داری ہے. اب آنے والا مجمع بیچارہ کچھ نہیں جانتا, آنے والا مجمع کچھ جانتا نہیں ہے, آنے والے مجمع کو کچھ معلوم نہیں ہے. وہ کسی جگہ مولوی صاحب بیان کرنے کے لیے گئے, مولوی صاحب بیان کرنے کے لیے, تو مولوی صاحب نے بیان شروع کیا, بیت الخلا بیت الخلا بیت الخلا بیت الخلا. تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, اور ایک دو نے 100 روپیہ ہدیہ بھی دیا مولوی صاحب کو, حالانکہ انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے. تو مولوی صاحب نے کچھ نہیں کہا, کیا کہا؟ بیت الخلا کیا ہوتا ہے؟ گاجروں تکی. لیکن وہ راگڑے سے کہا, ترنم سے کہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مجمع بیچارہ ایسا ہے, ایسا مجمع اجتماع میں آتا ہے, وہ مجمع کیا جانے. اس مجمع کو سنبھالنا, اس مجمع کا وقت صحیح گزروانا, یہ اس مجمع کی ذمہ داری. مجمع بیچارہ کچھ جانتا نہیں ہے, لوگوں کو کیسے دین ملے وہ ہم کوشش کریں گے. اگر ان کا وقت صحیح گزر گیا, انشاءاللہ ان کے 2 دن صحیح گزریں گے, وہ بہت بڑی خیر یہاں سے لے کے جائیں گے. اسے خطوار جماعت کو ایسا نہیں ہم لوگ آ گئے, بلکہ اب ہماری ذمہ داری ہوگی. بہت سی مرتبہ اجتماع میں ایسا ہوتا ہے مجمع جھوٹا نہیں ہے, یہاں سے اعلان بار بار کرنا پڑتا ہے. کیسے کرنا پڑتا ہے؟ جیسے مجھے یہاں بیٹھنے کا تھا, بولیے سب کا کوئی نہیں کرنا کہیں بھی ایسو, میں تو یہاں بیٹھے تھے کہ پبلک نہیں, تو مجھے نیچے اترنا پڑا. وہ اونٹ پہ بیٹھ کے بکریا تو چرائی نہیں جاتی, پبلک ہوئے تھے بھی یہی آپ. اب یہ وہ مجمع ہے جو خطوار جماعت کے نام پر آیا تھا. آپ کو جوڑنے کے لیے ہم کو 5-10 منٹ لگ گئی, اب مجمع کو کیسے جوڑیں گے ہم؟ اس طرح مجمع طے کرے کہ ابھی اثر کی نماز سے جو مجمع آئے گا, ہمارا کام تو فوجی کی طرح ہونا چاہیے, آرمی کی طرح, ملٹری کی طرح ہونا چاہیے, اشاروں پہ ہمارا کام ہونا چاہیے. اس سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو بہت سارا مجمع آئے گا, پرانے آئیں گے, نئے آئیں گے, دیہاتوں سے لوگ آئیں گے. اب خطوار جماعت کو ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے. ابھی عصر کی نماز کے بعد مشورہ ہوگا, تو ہر جگہ کے جن ذمہ داروں کو مشورے سے بلایا ہے, جو بھی اعلان ہوا ہو, اس لائن کے مجمع کو مشورے میں بھیجنا. مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوگا, فجر کی نماز کے بعد زونوں کی کارگزاری ہوگی. ایسی بستیاں جب مسجد نہیں مدرسہ نہیں, ایسی جگہوں پہ جماعتوں نے جا کے کام کیا ہے, ان جماعتوں نے کیا کام کیا وہ ہمیں کیا پتا چلے, وہ تو جا کے بیٹھیں گے تب پتا چلے گا. ہمارے یہاں آنند ضلع میں یہ آخری 2 سال میں 87 جگہ نئے مکاتب شروع ہوئے. وجہ کیا بنی؟ یہ جو زونوں کی جماعتوں نے کام کیا. اور ہمارے یہاں ساتھی اس کی فکر کرتے ہیں, زونوں کی جماعتیں جب کارگزاری سناتی ہے, ہر بستی کے 5-5 ذمہ دار, زون کے ذمہ دار اور مکاتب چلنے والے محتیم حضرات, مکاتب چلانے والے, مدرسے چلانے والے محتیم حضرات, اور وہ صاحب خیر جو پیسہ اللہ کے نام پہ لوگوں کو دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی اس میں بلاتے ہیں تاکہ متوجہ ان کو ضرورت کا احساس ہو کہ مکتب شروع کرنے کی ضرورت ہے. یہ 2 سال میں 80 سے زیادہ مکاتب شروع ہوئے ہیں. تو خطوہ جماعت کو پتا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو کارگزاری میں بھیجنا. 10 بجے علماء کی مجلس ہوگی, خواص کی مجلس ہوگی. خواص کسے کہتے؟ دنیا بھی بڑے، دین ہی بڑے، دعوت کے بڑے. جی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے جو بیچارے اللہ کے ہاتھ میں نہیں جا پاتے، لیکن اجتماع میں خواص کے نام پہ آ جاتے. نیا نیا مجمع ہوتا ہے جن کو بیٹھنے کا بھی بھان نہیں ہوتا، کوئی ادھر کا بیٹھے کوئی ادھر کا بیٹھے، ایسے لوگ دین کی بات کو سننے کے لیے آتے. تو یہ خطہ جماعت کو ایسے مجمع کو وہاں بھیجنا، کل ظہر کی نماز کے بعد مقامی اعمال کی آباد ہوگی، عزائم ہوں گے، عصر کی نماز کے بعد اسٹوڈنٹ کی مجلس ہوگی، مغرب کے بعد پھر عمومی بیان، اور پرسوں فجر کی نماز کے بعد 100x100 کے پنڈال کے اندر مقامی اعمال کی کارگزاری ہوگی. تو یہ ساری باتیں خطہ جماعت کو معلوم ہونی چاہیے. اور اس لائن کا جو مجمع ہے، علماء کرام کی بھی مجلس ہوگی، پورے ضلع میں جتنے علماء کرام ہیں ان علماء کرام کی مجلس بھی کل صبح 10 بجے ہوگی. جیسے خواص کا جوڑ ہوگا اسی وقت علماء کرام کی بھی مجلس ہوگی. تو خطہ وار جماعت کی یہ سب ذمہ داری ہے. ہمارے جو اسٹال ہے، اسٹال وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اعمال کے موقع پہ بند ہوتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے پورا مجمع کیسے فارغ ہو جائے، تو اس کی فکر خطہ وار جماعت کو کرنا. خطہ وار جماعت کی ترتیب مشورے سے بن جاوے، ہر جماعت کے ذمہ دار ہو، اس میں تعلیم کرنے والا مجمع، تشکیل تفقد کے ساتھی، مجمع جوڑنے والے ساتھی، چوکی دارے والے ساتھی، دعا ذکر کی جماعت، صفحے صحیح کرنے والے. اس لیے کہ مجمع جب بیٹھتا ہے تو صفحے تتر بتر ہو جاتی ہے، جب بیان ختم ہو نماز سے پہلے صفحے صحیح کر دینی چاہیے خطبہ جماعت کے ساتھیوں کو. یا اگر کسی بستی والوں کو کام سونپا ہے، جب مجمع باہر نکلے مجلس چھوٹے اس وقت جگہ خالی ہوتی ہے، ساتھیوں کو صفحے کھینچ کے صحیح کر دینی چاہیے. خطبہ جماعت کے ساتھیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ سامان کو صحیح ترتیب سے رکھوانا، ورنہ بے ترتیب اگر سامان ہوگا، بے ترتیب صفحے ہوگی، تو جماعت کی سب بھی صحیح نہیں لگے گی. یہ سارا کام خطہ وار جماعتوں کو کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم کو جلدی بلایا ہے، اور یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کل شام کو آئی ہوگی، صبح آئی ہوگی، اور ابھی بھی یہ مجلس اسی عنوان پہ ہے. عصر کی نماز کے بعد بھی مجلس ہوگی، بزرگان دین کی بیان ہوگا، انسانوں کی مجلس ہوگی، مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. تو اس مجمع کی ذمہ داری ہے، آنے والا مجمع ہم سب اتنے فکر میں ہو، آنے والا مجمع کو ہماری فکر منتقل ہو. شروع شروع میں جماعتوں میں جاتے تھے تو یہ بات سمجھائی جاتی تھی، کوئی نیا آدمی آیا مسجد میں اور جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے امیر صاحب کون ہے، تو وہ سوچے جماعت اتنی فکر میں ہو کہ آنے والا سوچے یہ امیر صاحب ہوں گے. تھوڑی دیر بعد سوچے نہیں، اس سے زیادہ یہ فکر مند یہ امیر صاحب ہوں گے. تھوڑی دیر بعد سوچے نہیں، یہ امیر صاحب لگتے. وہ فیصلہ نہ کر پائے امیر صاحب کون ہے. جماعت میں سب ساتھی ایسے ہونے چاہیے ان کی فکروں کا اثر آنے والے پر پڑے. ایسے یہ جو مجمع، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، شروعات میں آنے والے مجمع پر جو اثر آپ کا ہوگا وہ آخر تک رہے گا، اور وہی مجمع یہاں سے کچھ لے کے جائے گا. اس کی فکر یہ خطہ وار جماعت کو کرنی چاہیے. تو یہ مجمع فکر اس بات کی کرے کہ ہماری جو جماعت سات یا آٹھ جماعتیں بنی ہوئی ہے، اس میں جو ہمارے ذمہ دار ہوئے، وہ سارے ذمہ دار یہاں جو مجمع جوڑنے والی جماعت سے منسلک ہو، ان سے لگے ہوئے ان کا تعلق ہو. کوئی بھی بات کہنے کی ہوگی یہاں سے آپ کا ذمہ دار حضرات کہیں گے، کوئی بات ہوگی آپ کو کہی جائے گی، ہر بات کا اعلان یہاں سے نہیں ہوگا. لیکن آپ کے جو ذمہ دار ہے، سات یا آٹھ آپ کی جماعتیں بنی ہوئی ہے، ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے، اس ذمہ دار کو ان سے ملتے رہنا چاہیے، اور یہاں سے جو بات چلائی جائے اس کی فکر کرنی چاہیے. اور جو جماعتیں مشورے سے بنی ہوئی ہے، تعلیم کرنے والی جماعت، اب تعلیم یہ ایک ہلکا نہیں لگے گا، مائک سے تعلیم نہیں ہوگی، الگ الگ خطوں میں تعلیم ہوگی، اپنی اپنی کتابیں موجود ہونی چاہیے. آپ یہاں سے کتابیں ڈھونڈو کہاں سے ملے گی. تو ہر جماعت کو، خطہ وار جماعت کے ذمہ داروں کو اپنی کتاب کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، اور دو تین سیٹ ہر خطہ وار جماعت کے پاس ہونے چاہیے. ایک خطہ لگا مجمع بڑھا تو خطے بڑھانے چاہیے، پورے مجمع میں الگ الگ جگہ تعلیم ہوگی، قرآن پاک کا سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہوگا، تصحیح قرآن کا حلقہ خطہ وار جماعتیں کرے گی، تعلیم جماعتیں کرے گی، خطہ وار جماعتیں، اور اخیر میں چھ سفات سے مذاکرے بھی ہوں گے. یہ سارا کام خطہ وار جماعت کے ذمے. تشکیل کے موقع پہ ساتھیوں کو کھڑے رہنا، مجمع جوڑنے کے موقع پہ مجمع کو جوڑنے کی فکر کرنا، یہی تو کام ہے. خالی پروسیجر پوری کرنے کے لیے، کھانا پوری کرنے کے لیے کہ تمام جماعتیں نہیں بنی، بلکہ یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں اور یہ سب ہمارے کام ہیں، اس کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہے ساتھی جن کو اللہ تعالیٰ نے جلدی قبول کیا ہے، اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے. تو سب اس بات کو طے کریں کہ جو ذمہ داری ہم کو مشورے سے دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو انشاءاللہ پوری کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اور آنے والا مجمع جو نیا ہوگا، نئے مجمع کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اکرام سے پیش آنا، انہیں آرڈر نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے بات نہیں کرنا، بلکہ محبت کے انداز سے بات کرنا. اسی جگہ بات سنی تھی کہ آدمی کیسا ہونا چاہیے جوڑنے کے لیے، سر پہ بر یا سر پہ برف اور منہ میں شکر، تو کام ہو سکتا ہے. ایل فیل بکنے لگو تو کام نہیں چلے گا. ہماری زبان کی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے ہماری زبان کے بول یا ہمارا لہجہ کوئی ایسا نہ ہو کہ آنے والا بیچارہ ناراض ہو جائے، بلکہ ہم کو یہ ساری باتوں کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے پورا مجمع طے کرو کہ جتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں ان ساری باتوں کا انشاءاللہ پورا خیال رکھیں گے، اور کل سے مجلسوں میں جو باتیں آئیں ان باتوں کا انشاءاللہ ہمیں مذاکرہ بھی کرتے رہنا ہے. اور 3 دن تک آنے والے مجمع کا وقت صحیح گزرے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. ہاں تو اس کے لیے ساتھی طے کر لیے ہوں گے آپ لوگوں نے.